الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله ماشاء اللہ آکسفورڈ کے شہر میں ہماری حاضری ہے اور بڑی خوبصورت اور عالی شان مسجد میں آنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے. اللہ کریم اس مسجد کو بنانے والے, آباد رکھنے والے, چلانے والے سب کو شاد و آباد رکھے, سب کو دنیا اور آخرت کی برکتیں اور بہاریں نصیب فرمائے. ہمارے نارملی جو ایک کانسیپٹ ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ حالات ایسے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو چینج نہیں کر پاتے اور اس کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو حالات کی سپورٹ کر دیتے ہیں. آپ کے سامنے جو اس وقت میں بیان کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر انسان کی نیت مضبوط ہو, انٹینشن مضبوط ہو اور وہ چاہتا ہے کہ میں یہ کروں گا یا وہ چاہتا ہے کہ میں یہ نہیں کروں گا, تو دونوں صورتوں میں اس کے لیے راستے نکل آتے ہیں. ایک بزرگ گزرے ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ, ان کے بدن سے مشک کی خوشبو آتی تھی, عطر کی نہیں تھی, کوئی پرفیوم یوز نہیں کرتے تھے مگر بدن سے خوشبو آتی تھی. ایک دن کسی نے بہت ہی بائی فورس کہا کہ آپ بتائیں تو صحیح کیا وجہ ہے. فرماتے کہ جوانی میں میں بہت حسین و جمیل تھا اور بڑے اٹریکشن تھی میرے میں اور میں کپڑے کی دکان میں جاب کرتا تھا. وہاں ایک بڑی عمر کی عورت آئی اور اس نے بہت سارے کپڑے نکلوائے. ہمارے سیٹھ مالک نے بہت سارے کپڑے نکال کے دیے. اس نے کہا کہ اگر تم کہو تو میں یہ سارے کپڑے تم اپنا یہ جو نوجوان لڑکا ہے یا میرے ساتھ کر دو, میں گھر لے جاتی ہوں, گھر لے جا کر میں جو جن کو کپڑے چاہیے ہم پسند کر لیتے ہیں, جو ہم کو چاہیے ہوگا رکھ لیں گے جو اور پیسے دے دیں گے, جو نہیں چاہیے ہوگا یہ لڑکا پیسے اور وہ کپڑے واپس لے آئے گا. کہ بھلی بات ہے, اوکے. وہ کپڑے لے کر نوجوان کہتا ہے کہ میں چلا. بہت بڑے مکان میں محل نما ایک گھر تھا, میں اس میں داخل ہوا اور مجھے کمرے میں بٹھا دیا گیا. میں ہوں اور کپڑے ساتھ تھے. ایسے میں ایک خوبصورت نوجوان عورت اس کمرے میں داخل ہوئی اور دروازے بند ہو گئے. وہ عورت میرے ساتھ گناہ کا کام کرنا چاہتی تھی. میں نے اسے بہت سمجھایا مگر وہ نہ مانی, اس پر نفس و شیطان غالب تھے. لیکن میرا ذہن بنا ہوا تھا کہ میں نے یہ برا کام کرنا نہیں ہے. ہاتھ پیر مارے میں نے لیکن کوئی نکلنے کا راستہ نظر نہیں آیا. تو مجھے ایک ٹرک سوجھی. میں نے اس کو کہا کہ واش روم کا ہے, مجھے باتھ روم یوز کرنا ہے. تو اس نے کہا یہ باتھ روم ہے. باہر نکلنے کا تو راستہ تھا نہیں کوئی. تو جیسے ہی میں باتھ روم میں گیا تو باتھ روم میں جا کر میں نے دیکھا تو باتھ روم میں نجاست تھی. اب میں نے دل مضبوط کیا اور نجاست اپنے بدن پر مل لی, گندگی اپنے بدن پر مل لی اور باہر آ گیا. وہ دیکھتے ہی وہ عورت تو بھاگی, وہ تو گھبرا گئی کہ کوئی پاگل واگل ہو گیا کیا ہو گیا ہے. دروازے بھی کھل گئے اور میں باہر بھاگا اور بھاگتے بھاگتے میں نے ایک جگہ پہنچ کر پھر میں نے پانی وغیرہ ڈال کر نہایا. رات خواب میں میں نے دیکھا تو ایک فرشتے نے
जिनका नाम जिब्राइल था, मेरे आकर बदन पर अपने पर घुमाए या हाथ घुमाए। बस वो दिन है और आज का दिन है, मेरे बदन से मुश्क की खुशबू आती है। बात जो समझाना चाहता हूं वो ये है कि जब इंसान अपने मकसद को समझ लेता है कि मेरा मकसद मेरे रब को राजी करके जन्नत पाना है, बहुत सिंपल सा एक हमारा मुसलमान का मकसद क्या है, वमा खलक तो जिन्ना वल इंसा इल्ला लियबुदून, इंसानों की आमद का मकसद, इंसानों की पैदाइश का मकसद ये है कि अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया ताकि हम उसकी इबादत करें। और अल्लाह फरमाता है लज़ी खलकल मौत वल हयात लियबलुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, हमने जिंदगी और मौत को इसलिए पैदा किया कि हम देखें तुम्हें से कौन अच्छे अमल करता है। मैंने जब वो वाक्य बयान किया इसमें बज़ाहिर उस नौजवान के पास कोई सूरत नहीं थी निकलने की, लेकिन उसका माइंड सेट था कि मैं गुनाह नहीं करूंगा। हालांकि उसके पास मौका भी था, हर चीज उसके पास अवेलेबल थी, नौजवानी थी, हुस्न जमाल था, बहुत सारी चीज उसके पास दस्तियाब थी, लेकिन जब एक माइंड बन जाता है ना तो फिर प्रॉब्लम नहीं होती। एक अरसे से टर्मिनोलॉजी माशरे में चल रही है हमारी सोसाइटी में, वुमेन अब्यूजमेंट। मेरे नजदीक वुमेन अब्यूजमेंट वहां ज्यादा है जहां पर पर्दा कम है, और वुमेन अब्यूजमेंट वहां कम है जहां पर्दा ज्यादा है। अब अब्यूजमेंट की बहुत सारी सूरतें बनेंगी, लेकिन देखा यही गया है कि जहां पर पर्दा है वहां औरत ज्यादा महफूज है, जहां पर्दा कम है वहां औरत कम महफूज है। आपको जहां दाढ़ी टोपी इमामा और पर्दा जिस मुल्क जिस शहर में ज्यादा नजर आएगा ना, वहां क्राइम और इस तरह की चीजें आपको कम मिलेंगी। ये वर्ल्ड वाइड आप देख ले, चाहे वो दुनिया का कोई भी मुस्लिम एरिया हो, चाहे वो रशिया का अंदर हो, ख्वा वो अमेरिका के अंदर हो, ख्वा वो यूके के अंदर हो, ख्वा वो दुनिया के किसी भी मुल्क के अंदर हो, पाकिस्तान में हो कि हिंद में हो कि बांग्लादेश में हो, वॉट एवर, या अफ्रीका के किसी रीजन में हो, आप ये देख लीजिएगा जहां ये दो तीन चीजें ज्यादा होंगी ना वहां क्राइम कम होगा, वहां पर जो एक ह्यूमन राइट्स के नाम पर जो एक चीजें चलती हैं और उसके आप देखें वहां कम से कम इन चीजों का अभी खून हो रहा होगा। ये बहुत हमें अपने मुशाहदे की बात करता हूँ, ये मेरी कोई भी मुझसे इख्तलाफ कर सकता है, लेकिन ओवरऑल अगर आप जायजा लेंगे तो आपको ये चीजें वहां पर ये कम ज्यादा का आपको फर्क नजर आ, क्योंकि वह इस्लाम और दीन पर अमल करने वाले लोग। मैं नहीं कहता कि वहां गलतियां नहीं होती होंगी, मैं नहीं कहता वहां क्राइम नहीं होता होगा, मैं नहीं कहता वहां पर लोग ज्यादती नहीं करते होंगे, वहां पर जुल्म नहीं होता होगा, वहां वुमेन अब्यूजमेंट नहीं होता होगा, वहां चाइल्ड अब्यूजमेंट नहीं होता होगा, मैं ऐसा नहीं कहता, होता होगा। बस एज ए कंपेयर करेंगे, तकबुल करेंगे तो आपको वहां पर जहां पर नंबर ऑफ अब्यूजमेंट बहुत ज्यादा होंगे ना वहां पर आपको ये चीजें कम मिलेंगी, और जहां पर कम होंगे ना वहां आपको ये चीजें ज्यादा मिलेंगी। ये क्योंकि आजकल हमारे यहाँ जरिया है रिसर्च का, सर्चिंग का, नॉलेज का, वो मिस्टर गूगल साहब हैं, ठीक है, वहां जाते हैं तो वहां जाकर जो वहां होता है हमारे सामने आ जाता है। लेकिन इसके अलावा भी अगर आप थोड़ा सा निकल कर रिसर्च करेंगे, मालूमात करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि आपको ये चीजें बखूबी मिलेंगी। जैसे हमारे पीर साहब अमीर अहले सुन्नत बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि मेरा चैलेंज है, अमीर अहले सुन्नत मौलाना इलियास कादरी साहब फरमाते हैं, मेरा चैलेंज है एक आलिम, आलिम हुआ दीन का आलिम हो, सनत का खाली आलिम ना हो, दीन का आलिम हो, आलिम दीन हो, आप प्रूफ नहीं कर सकते कि इसे कभी सुसाइड की होगी ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो हो वाकई आलिम, आलिम सुसाइड नहीं करता, आलिम खुदकुशी नहीं करता, सिर्फ दाढ़ी वाला आलिम नहीं होता, सिर्फ टोपी वाला आलिम नहीं होता, सिर्फ इमामे वाला आलिम नहीं होता, आलिम आलिम होता है, वो इल्म का आलिम होता है, उसे बाकायदा इल्म हासिल किया हुआ होता है, उसे पढ़ा हुआ होता है, वो इसकी हराम मौत होने को समझता है, हराम मौत होने को जानता है। इसी तरह जहां पर आप देखेंगे कि औरतें विल करती हैं, पर्दा करती हैं, कवर्ड करती हैं खुद को, इनके साथ शरारत का रेशो ना होने के बराबर होगा। ख्वाह आप किसी यूनिवर्सिटी में चले जाएं, किसी कॉलेज में चले जाएं, किसी मार्केट में चले जाएं, किसी एरिया में चले जाएं, वॉट एवर, किसी भी सिटी में चले जाएं, कवर्ड वुमेन कम ही प्रॉब्लम का शिकार होती होगी, क्रिटिसाइज होता होगा उसको, माज अल्लाह कोई ना कोई तंग करता होगा, मगर ये जो आवाज निकालना है ना किसी के बारे में, ये तकलीफ कम है। पर्दा ना होने की वजह से जो होना है ना उसके साथ, उसके बाद की तकलीफ ज्यादा है। ये चार दिन की थोड़ा सा क्रिटिसाइज करेंगे, दो चार दिन लोग चीखेंगे चिल्लाएंगे बोलेंगे, लेकिन उसके बाद नॉर्मल हो जाएंगे। कब तक कोई किसी को रोज बोलेगा? और वो मतलब बहुत पीसफुल लाइफ अपनी गुजारेगी। इसी तरह जो दाढ़ी रखते हैं, इमामा शरीफ बांधते हैं, अगर थोड़े दिन रेगुलर अगर ये कर ले ना, थोड़े दिन रेगुलर कर लें, दिल पकड़ कर थोड़े दिन रेगुलर कर लें, तो उनकी ये जो बोलने वाले हैं ना, ये चुप हो जाते हैं। ये आपको पता होगा कि लोग कब तक बोलते हैं। तो यहाँ जो मैं समझाना ये चाहता हूँ कि अपना जहन बनाने की बात है। अगर आपका माइंड मजबूत है, आपका दिल मजबूत है, आपका जहन बना हुआ है कि मैं अल्लाह ताला की इबादत करूंगा, उसको राजी करूंगा और प्यारे महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करूंगा, आपको कोई माहौल रोक नहीं सकता इस चीज से, क्योंकि वहां आपको रब की मदद ऐसी आएगी कि आपका दिल भी मजबूत होगा, आपका दिमाग भी मजबूत होगा। लेकिन जब हम खुद ही कंफ्यूज माइंडेड होंगे, एब्सेंट माइंडेड होंगे, हम खुद ही मतलब कि इतने ज्यादा मजबूत नहीं होंगे, तो कैसे हम लोग अपना अमल कर सकते हैं। एक बड़े बुजुर्ग गुजरे, उनका नाम था हजरत हुदबा बिन खालिद, मुहद्दिस थे, बहुत बड़े मुहद्दिस थे, हदीस के बहुत बड़े आलिम थे। एक दफा खलीफा ने, वक्त के बादशाह ने अपने दरबार में दावत रखी थी, वो खाने के लिए आए थे लोगों के साथ। तो जब वो खाना खाने आए, तो जब लोग खाना खा रहे थे, तो खाना खा चुके, तो खाना खाने के बाद वो क्या कर रहे थे कि जो दस्तरखान था, फूड मेट, नीचे बैठ के खाते थे पहले के लोग। आपको ही पता होगा हमारे बड़े बूढ़े नीचे बैठ कर ही खाकर बड़े हुए हैं। तो वो दस्तरखान पर गिरे हुए खाने के दाने चुन चुन कर खा रहे थे। तो अच्छा, वो जो दरबार में कुछ लोग थे, जो जैसे आजकल हमारे यहाँ दुनिया में कुछ ज्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं, और वो इनको मैनर्स फोबिया हुआ हुआ होता है, ठीक है, वो देख कर थोड़ा सा यूं हंस रहे थे ना, कि लगता है हजरत का पेट भरा नहीं है अभी इधर। तो बादशाह ने कहा, हजरत अगर फरमाए तो कुछ और खाना पेश करूं। आप समझ गए कि ये मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। आपने फरमाया कि मैं तुम दुनियादार लोगों की वजह से अपने प्यारे हबीब की सुन्नतों को नहीं छोड़ सकता। और फिर उन्होंने कुछ इस तरह की रिवायत बयान की जिसका खुलासा यह है कि जो जमीन पर गिरे हुए खाने के जरा चुन चुन कर खा लेगा, अल्लाह ताला उसको मुफलिसी से दूर कर देगा, यानी मुफलिसी उससे दूर हो जाएगी, तंगदस्ती, मुफलिसी, गुर्बत। बादशाह बादशाह होता है, इसकी समझ में आनी चाहिए बात, बादशाह की आगे समझ में बात। बादशाह ने खादिम को कहा, हजरत को दिरहम दीनार पेश किए जाए। वो गया अंदर में थैली ली और दिरहम दीनार हाथ में रख दिए। हजरत हुदबा बिन खालिद रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाने लगे, बादशाह सलामत, देख मेरे महबूब करीम की हदीस, यहाँ मैंने इनकी हदीस पर अमल किया, यहाँ अल्लाह ने मेरी मुफलिसी दूर कर दी। माइंड बना हुआ था। मेरा टॉपिक यही है कि हमारा जहन बनना चाहिए। हमारा एक बार जहन बन जाता है ना, हम माइंड सेट जिसको क्या कहते हैं, तो हम वो कर गुजरते हैं। किसी का जहन बनता है कहीं दुनिया में बैठकर मैंने आकर एक ऑक्सफर्ड में दाखिला लेना है, वो 5-10 साल पुराना जहन होता है, ऑक्सफर्ड में जाकर पढ़ूंगा, पढ़ने आ जाता है। ये हमने देखा है, किसी का जहन होता है कि भाई मैंने वहां पहुंचना है, पहुंच जाता है। किसी का मैंने यूके जाना जरूर है, वो समुन्द्र पार करके यूके आ जाता है। लीगल इलीगल ये मैं बहस नहीं कर रहा, मगर वो जान जोखिम में डालकर भी अपना काम, क्यों, माइंड बन चुका है। तो माइंड बनता है ना तो बन जाता है। जिस तरह अगर इस्लामी बहनों का जहन बन जाता है ना कि मैंने नेकी करनी है, इबादत करनी है, तो कर लेता। आपका जहन बन गया कि हमने मस्जिद में आना था, आज आपका माइंड बन चुका था कि कुछ भी हो जाए हमने मस्जिद में जाना है, हमने आज बयान में शिरकत किया, आप आ गए। कई ऐसे हैं जो आपके साथ वाले हैं मस्जिद में नहीं आते, आप उनको दावत देते, उनका माइंड ही नहीं है ना मुझे मस्जिद में नहीं आना। लेकिन जब एक माइंड बन जाए ना तो मस्जिद में बंदा आ जाता है। इसे अगर आपका माइंड बन जाए ना कि मैंने किसी को मस्जिद में लाना है, सबसे बुनियादी बात होती है माइंड बनना। जो मेरा टॉपिक है वो यही है, माइंड बन जाए एक दफा। हमारा माइंड नहीं बनता, हम कंफ्यूज माइंड होते हैं, करें नहीं करें, होगा नहीं होगा, हम इसी तरह रहते हैं। तो इसमें नहीं होता कंफ्यूज में। अगर औरत खाना भी पकाए ना तो पता नहीं हलवा पकाते पकाते कोई अचार ही बना देगी, ये उसका माइंड बना हुआ कि मैंने हलवा ही बनाना है, तो वो हलवा ही बनाती है ना, उसी तरह उसकी रेसिपी यूज करती है। वो चूल्हे के सामने खड़े होकर देखती चढ़ाकर पतीरा चढ़ाकर, वो कंफ्यूज नहीं होती कि ये इसमें क्या क्या डालू, थोड़ी देर चावल डालेगी फिर बोलेगी चलो इसी में गोश्त बनाती हूँ, ऐसा नहीं हो। कंप्लीट उसका माइंड बना हुआ होता है कि मैंने बनाना क्या है, तो वो चीज बनाकर वो हमें दे देती है। माइंड क्लियर होना चाहिए। जब आपका माइंड क्लियर है और आप चाहते हैं कि मैं इसको मस्जिद में लाऊंगा, मैं इसको नेक बनाऊंगा, मैं इसको गुनाहों से बचाऊंगा, तो आपको रास्ता मिल जाता है। मैंने एक वाक्य पढ़ा, एक शख्स एक कॉलेज के अंदर एज ए टीचर अपॉइंट हुआ। वो था नमाजी था, नेक था। अच्छा, जब ब्रेक होती है तो टीचर का एक अपना एक हॉल होता है, कमरा होता है, जिसमें टीचर आकर बैठते हैं, बातचीत करते हैं। तो ऑलमोस्ट ये 7-8 टीचर थे जो बैठकर बात करते थे, ये नए इनके अराइवल थे। उन्होंने देखा कि एक टीचर जो है ना बिल्कुल अलग थलग अकेला बैठा है। तो उन्होंने कहा कि ये क्यों अलग बैठे हुए? तो कहा छोड़ो इसको यार, ये किसी काम का नहीं है ना, एक वक्त की नमाज पढ़ता है ना, अल्लाह का नाम लेता है, बिल्कुल अजीब व गरीब किस्म का आदमी है, मुसलमान लेकिन किसी काम का नहीं है, यूं करके हो उसको नजरअंदाज। अब वो नए टीचर थे, उनका जहन बन गया कि मैं इसको नेक बनाऊंगा, जहन बन गया। पहले बनता है जहन, वो जाकर उसके पास बैठ गए, सलाम दुआ हुई। तो सलाम दुआ तो करनी होती है, उसने भी जवाब तो दिया था लेकिन वो लेख नहीं करा रहा। एक दो दिन उन्होंने सलाम दुआ की, फिर उन्होंने उसी को कहा, अब वो उसी के साथ उठ बैठ रहे हैं, कहा कि वो एक रिक्वेस्ट है आपसे कि मैं रूम ढूंढ रहा हूँ, अब नया नया आया हूँ आपके शहर में, आपको ऑक्सफोर्ड शहर में नया आ जाए तो उसको रिहाइश भी चाहिए होगी कि मैं रहूंगा कहाँ। सुना है आपके कमरे में एक जगह खाली है, मैं इंशाल्लाह आपको रेंट पेमेंट करूंगा, मगर जगह हो तो। बोला आप जगह है चलो कर लेंगे, लेकिन आप मेरे साथ एडजस्ट नहीं हो सकोगे, आपको नहीं पता कि मैं किस आदत का आदमी हूँ। कहा देखे मैं रहना शुरू कर देता हूँ, अगर आपको मेरे साथ मजा ना आए तो आप मुझे कह देना, मुझे आपके साथ मजा नहीं आएगा तो मैं चला जाऊंगा, जबरदस्ती तो है ही नहीं। और हाँ बात तो तुमने सही की, चलो ठीक है। ये हो गया, दोनों ने कमरे में रहना शुरू कर दिया। अब वो जो नेक आदमी थे, वो जब सुबह उठे तो सुबह उठ के उन्होंने अपने लिए नाश्ता और चाय वगैरह ऑमलेट वगैरह तैयार किया, अपने साथ साथ इसके लिए भी तैयार कर लिया। और वो उठा और जैसे ही मुंह हाथ धोकर बाहर निकला, उसका टेबल पर नाश्ता तैयार। बोला ये क्या? बोला अपने लिए बना दो। मैंने कहा आपके लिए बना दो, वो बहुत अच्छी बात है, खुश हो गया वो तो, चलो इतने अर्से के बाद किसी ने बैठ कर नाश्ता मिला उनको। दोनों कॉलेज गए, वापस आए, घर के काम का साफ सफाई, बेडशीट सही करना, कुछ कपड़े वपड़े सही तौर पे हैंग कर देना, ये सारे वो अपने भी करता उसके भी करता। नमाज का टाइम होता तो वो चुपचाप उठकर, वो जो नेक आदमी था वो चुपचाप उठकर मस्जिद की तरफ नमाज के लिए चला जाता, साइलेंट जोन में था वो। एक दिन ये दोनों बैठे थे, इतवार थी, कॉलेज तो थी नहीं, इनकी छुट्टी थी, दोनों कमरे में बैठे थे, चाय पी रहे थे, यहाँ वहां की बातें हो रही थी। असर की अजान हुई, ये चंद दिन गुजर गए थे। जैसे असर की अजान हुई तो चाय खत्म की और वो मस्जिद की तरफ चले, तो वो जो बेनमाजी आदमी थे उसने कहा यार भाई बात सुनो, तुम रोजाना मस्जिद जाते हो, तुम रोजाना नमाज से पढ़ो, तुमको नमाज में मिलता क्या है? का सुकून मिलता है। क्या कहा? सुकून मिलता है, मेरे दिल को सुकून मिलता है, मुझे राहत मिलती है, मेरा बोझ उतरता है। अब उसने पहली मर्तबा इससे नमाज की बात की, उसने मौका देखा, वो कहता ना लोहा गर्म है मार दो थोड़ा, इससे पहली दफा नमाज की बात की, कहा तुम्हें भी अगर सुकून चाहिए तो आ जाओ मेरे साथ। अब वो उसका मुंह देख रहा था, क्या चलो मैं भी चलता हूं। अब ये पहली दफा मस्जिद की तरफ चला, असर की नमाज पढ़ी, अब उसको क्या आती थी क्या पढ़ी वो एक अपनी जगह पर है। लेकिन वो हजरत कहते हैं कि मस्जिद में जैसे वो आया तो मैंने रब की बारगाह में उसकी, मौला यहाँ तक लाना मेरा काम था, अब आगे तेरा काम है, तेरी तौफीक से मैं यहाँ तक लाया हूँ, अब आगे तेरा काम है, तू अब इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद जैसे ही बाहर निकले उसने कहा क्या हुआ, मजा आया? तो मजा तो बहुत आया, वो सुकून मिला, बोलो सुकून तो बहुत मिला। कब मगरिब आओ इसे भी ज्यादा सुकून मिलेगा। इस दौरान उसने उसकी थोड़ी बहुत नमाज वगैरह की तरबियत करनी शुरू कर दी। यूं आहिस्ता 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 वो नमाज, वुजू, गुसल, जो जो मतलब एक फराइज वाजिबात होते हैं, ये इसका ट्रेनिंग सेशन अब शुरू हो गया। विद इन अ फ्यू मंथ वो शख्स जो बेनमाजी था, जिससे लोग बात नहीं करते थे, वो बाकायदा लोगों को नमाज की दावत देने वाला बन गया और बाकायदा वो समझे कि वो दाई बन गया, दाई इलल खैर जिसको कहते हैं, खैर की दावत देने वाला मुबलिग बन गया। वो एक पुराना वाकया ही है, मतलब ये इतना नया नहीं है, ये किसी और मुल्क का, किसी और सेटअप का वाकया ही है। लेकिन मेरी कहता हूँ एक शख्स का माइंड बन जाना चाहिए, बातों का तो माइंड बन जाता है यार, इसे दोस्ती करनी हो दोस्ती कर लेते हैं, मैंने से ये करना वो ये कर लेते हैं, होता है माइंड बन जाता है। माइंड अच्छाई की तरफ भी बनता है, माइंड बुराई की तरफ भी बनता है, ये याद रखिएगा। अब खुदा ना करता बुराई की तरफ दिमाग फंस गया या माइंड बन गया तो भी बंदा गया, फिर उसके दिमाग में फंस जाती है कि मैं, जैसे मिसाल के तौर बाद औकात किसी को देख लेते तो माइंड बन जाता है नहीं मैंने इसे शादी करनी है, अब वो उसी के पीछे उसी के पीछे उसी के, उसमें जो जो गुनाह के इसने हदें फलांगनी है वो फलांगता चला जाएगा। दिमाग बन गया इसका, दिमाग में फंस गई है, अगर हम कहते ना यार इसकी सुई अटक गई है, दिमाग में फंस जाती है। एक बुजुर्गों का काफिला हज पे जा रहा था, रास्ते में एक जगह इन्होंने कयाम किया, पहले लोग पैदल और ऊंटों पर हज करते थे, एक वक्त लगता था आने जाने में। तो काफिला जो था उसने एक शहर में कयाम किया हुआ, उन्होंने की मेहमान नवाजी की। उसी काफिले में एक नौजवान था, नेक आदमी था, उसकी नजर एक खूबसूरत लड़की पर पड़ गई, जैसे कांटे में मछली फंसती है ना, ऐसा बाजों का ना दिल फंस जाता है, अगर गुनाहों के कांटे में फंस जाए तो आदमी फंस जाता है, और अगर नेकियों के गुलशन में आ जाए ना तो मदीना मदीना। अब उसके दिमाग में आ गया कि मैं इस लड़की से शादी करूंगा, उसने बहाना बनाया कि मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं है, तुम आगे जाओ, हज पे जा रहे थे, तुम आगे जाओ मैं पीछे तुमसे मिलता हूँ। काफले वाले आगे चले गए, उसने पीछे जाकर लड़की का ताकुब किया, उसके पीछे पड़ा, उसने कहा कि मैं तुझसे शादी करना चाहता हूँ। उसने कहा मैं ईसाई हूँ, तो कहा बोला क्या हुआ, शादी कर ले? कहा मेरे बाप से बात कर। इसके वालिद से बात की, तो वालिद ने कहा तू मुसलमान है, मेरी बेटी ईसाई है, क्रिश्चियन है, शादी कैसे कर सकती है? बोला मुझे करनी है तुम्हारी बेटी शादी। कहा ठीक है, अगर तुझे करनी है तो तू ईसाई हो जा, क्रिश्चियन हो जा, मैं कर देता हूँ। वो क्रिश्चियन हो गया। अल्लाह की खुफिया तदबीर, दिल बदल जाता है, दिमाग बदल जाता है, उलट जाता है। शादी भी हो गई, बच्चा भी हो गया, और बच्चा हुआ थोड़े दिन मर भी गया, वो ईसाई मरा। अल्लाह हमारे ईमान की हिफाजत करे। थोड़े अरसे के बाद वहीं से उन बुजुर्गों का गुजर हुआ उस इलाके से, तो पूछने लगे तुम हमारा नौजवान इधर रहेगा तो है कहाँ? तो फिर गांव वालों ने, उस इलाके वालों ने सारी स्टोरी सुनाई, तो वो तो यूं ही हुआ था। अब वो रोने लगे, और रोने लगे कि तो आप क्यों रो रहे हैं? कहा हमें पता था कितना मुत्तकी, नेक, परहेजगार, खौफे खुदा वाला आदमी था, और उसके सारे वाकया सुनाने शुरू किए, और ये अल्लाह की खुफिया तदबीर, ये वाकई बहुत डरने वाली बात मैं कर रहा हूं कि अल्लाह की खुफिया तदबीर, ये क्या हो गया इसके साथ कि ये मतलब इस्लाम छोड़ दिया, मुर्तद हो गया और गैर मुस्लिम हो गया, ईसाई हो गया, और यूं रोने लगे। अच्छा, पर्दे के पीछे इसकी वही बेवा औरत, वही औरत थी तो क्रिश्चियन, वो सुन रही थी सारी बातें, और वो वहां बैठकर रो रही थी कि मेरा शोहर इतना नेक मुसलमान था, और वो सुन सुनकर इसकी नेकी परहेजगारी सुनकर उस औरत का माइंड बना और वो कलिमा पढ़कर मुसलमान हो गई। आपने सुना होगा एक जिसने हिस्ट्री पढ़ी है, मुगलिया सल्तनत का आखिरी चश्मो चराग था, ये था शायर, बहादुर शाह जफर जो था ना वो शायर था। इसे अंग्रेजों ने काले पानी की सजा दे दी थी, ये मतलब ये फाइनल राउंड था इनका। तो इसने कलाम लिखा, वो कलाम क्या है पता है? लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दियार में, किसकी बनी है आलमे ना पायदार में, उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, दो आरजू में कट गए, दो इंतजार में। बुलबुल को बागबां से ना सयाद से गिला, किस्मत में कैद थी लिखी फसले बहार में। कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, दो गज जमीन भी ना मिली कुए यार में। तो लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दियार में, किसकी बनी है आलम ना पायदार में। तो ये जो चीजें हैं ना, ये इसमें इबरत है कि कब अल्लाह ना करे ईमान दिल से निकल जाए, खुदा ना खास्ता इस्लाम के मामले में वसवसे आ जाएं, कुछ नहीं कहते। तो अल्लाह करे कि हम लोग अच्छे लोगों में रहें, नेक लोगों में रहें, अपनी निगाहों की हिफाजत करें, अपनी सोचों की हिफाजत करें, इसको उसको सुनने से गरेज करें। बहुत फितने का दौर है, इसको भी सुनने का शौक है, उसको भी सुनने का शौक है, यार इसकी भी सुन लो, उसकी भी सुन लो। तो किसी की खुदा ना खास्ता फंस गई तो कहीं के नहीं रहेंगे। उसके दिमाग के अंदर लड़की फंस गई, वो काफिर हो गया, गैर मुस्लिम हो गया। तो ये नहीं होता, एक बहुत पॉजिटिव चलना पड़ता है इसमें। मतलब आदमी की, जिसको हम उमूमन कहते हैं डेढ़ होशियारी, काम नहीं आती। अल्लाह और उसके रसूल से डरना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए, अपने इस्लाम और दीन पर कायम रहने की कोशिश करनी चाहिए। और बल्कि इसी पर है ना, ना मरना मगर मुसलमान, ये है ना। और अल्लाह की खुफिया तदबीर से डरते रहें। कोई खुदा ना खास्ता कोई शराब दिमाग में फंस गई, कोई नशा दिमाग में फंस गया, कोई औरत दिमाग में फंस गई, कोई मर्द दिमाग में फंस गया, कोई खुदा ना खास्ता गुनाह की कोई नहुसत दिमाग में फंस गई, कोई ऐसी चीज दिमाग में फंस गई और फिर ना निकली ना, और बन गया दिमाग है ये करना ही करना है मेरे को, जिद चढ़ जाती है, दिमाग खराब हो जाता है, दिल बिगड़ जाते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की वो दुआ याद रखे, या मुकल्लिबल कुलूब सब्बित कल्बी अला दीनिक। मेरे आका दुआ करते थे अपने रब के हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, या मुकल्लिबल कुलूब सब्बित कल्बी अला दीनिक, ए दिलों को फेरने वाले मेरे दिल को अपने दीन पर साबित रख। कुरान करीम की दुआ है, रब्बना ला तुज़िग़ कुलूबना बादा इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। या अल्लाह हमारे दिलों को टेढ़ा ना कर, ला तुज़िग़ कुलूबना बादा इज़ हदैतना, बाद इसके कि तूने हमें हिदायत दी, हमारे दिलों को टेढ़ा ना कर। दिल बदल जाते हैं, दिमाग खराब हो जाते हैं, माइंडसेट चेंज हो जाता है, आखरत बनाते बनाते दुनिया बनाने में लग जाता है, दुनिया बनाते बनाते आखरत बनाने में लग जाता है। कब जहन पॉजिटिव नेगेटिव, दिमाग दिल कब पॉजिटिव नेगेटिव हो जाए। कल्ब, दिल को क्या कहते हैं, कल्ब, कॉफ लाम बा, कल्ब। कल्ब को कल्ब क्यों कहते हैं, क्योंकि पलटता रहता है। आप देखा कभी क्या सोचता है, कभी क्या सोचता है। आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते मोमिन का दिल मैदान में रखे एक पर की तरह है, जैसे हवा उलट पलट करती रहती है। आप कभी क्या सोच रहे हैं, कभी क्या सोच, कभी क्या सोच, कभी क्या सोच। अल्लाह से आफियत का सवाल करें। और मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, दुआ है, दुआ करते हैं तो बहुत प्यारी दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल मुआफात फी दुनिया वल आखिरा। या अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूँ दुनिया और आखरत की आफियत का, जिसे आफियत मिली उसे दुनिया में भी खैर है, आखरत में भी खैर है। और इसके लिए भरपूर कोशिश करे, यहां वहां दिमाग ना घुमाए, वह मदीने की यादों में रहे, मक्के की यादों में रहे, मदीने वाले की यादों में रहे, कुरान पर तवज्जो करे और मस्जिद की तरफ रुख रखे, नेक लोगों में उठे, नेक लोगों में बैठे, यहां वहां हाथ पैर मारकर ऐसे ही, मतलब बहुत माहौल खराब है, और मतलब बहुत माहौल खराब है, बहुत माहौल खराब है। हम अपने आप को किसी सूरत मजबूत करने की कोशिश करते रहें, मजबूत समझ ना लें कि मैं मजबूत हो गया हूं, क्योंकि मैं कहा ना फिसलने में देर नहीं लगती। मजबूत से मजबूत आदमी का पांव कब किसी वसवसे के केले के छिलके पर आ जाए और वो स्लिप हो जाए पता भी नहीं चलेगा, तो समझ नहीं आती कब क्या चीज हो जाए। अल्लाह से डरते रहना चाहिए, अल्लाह हमारा ईमान सलामत रखे, अल्लाह हमारा ईमान सलामत रखे, अल्लाह करीम हमारा ईमान सलामत रखे। और बस نیک متقی پرہیزگار لوگوں میں رہیں. اللہ فرماتے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, اور سچوں کے ساتھ وابستہ رہو, سچوں کے ساتھ وابستہ رہیں, اس سے دعا کرتے رہیں کہ وہ ہمیں نیکی کی پرہیزگاری کی توفیق دے, ہمارے دل مضبوط کرے اور ہمارا ذہن مضبوط کرے کہ بس ہمارا ایک ذہن بن جائے کہ میں نے صرف نیکی کرنی ہے, اور یہ اتنا مطلب وہ نہیں ہے, مطلب اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ نیکی ہے یہ نیکی نہیں ہے. گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے نہیں, مطلب آدمی وہ فیلنگ اچھی نہیں ہوتی اس کے اندر نا, نیکی میں فیلنگ ہمیشہ آپ کو اچھی لگے گی. کثرت دعا کرتے رہا کر, دن میں کوئی گھنٹوں دعا کرنے کا موقع ملے تو کر لو. دعا ہے کہ اپنے رب سے کلام ہی کرنا ہے نا, اور وہ سمیع ہے وہ بصیر ہے. تو انشاءاللہ اس طرح اور ہم سوچتے رہیں گے, اور اچھی پوزیٹیو مینٹلٹی کے ساتھ رہیں گے, نیک لوگوں کے ساتھ رہیں گے. دعوت اسلامی کا مدری ماحول ہے. اسی طرح جیسے میں نے ایک واقعہ سنایا کہ آپ نیت کریں کہ آپ اسلامی بھائی کو نیک بنائیں, انہیں مسجد کی طرف لائیں, کوشش جاری رکھیں, اور اس کے لیے آپ کو اپنا کردار ادا کر, اخلاق جس کو کہتے ہیں نا, اسلامک مینرز کے ساتھ اگر آپ چلیں گے تو وہ انشاءاللہ آپ کی طرف مائل ہو جائیں گے. ڈانٹنے سے, جھاڑنے سے, غصہ کرنے سے, طنز کرنے سے, تانا, اوے مسلمان ہو کر نماز نہیں پڑھتا, او داڑھی والا ہو کر یہ کام کرتا ہے, او کر کے, یہ مطلب یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے. جب آپ ڈاکٹر بھی کسی کو شفا دینا چاہتا ہے, ڈاکٹر بھی کسی کا علاج کرنا چاہتا ہے, تو اس کو جھاڑ کر ڈانٹ کر نہیں کرتا, وہ بہت تو پیار سے ہی دوا کھلاتا ہے. پاگل خانے میں بھی ڈاکٹر پاگلوں کو بھی اچھی طرح ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں. جب آپ کا ذہن کسی کی اصلاح کرنا ہے, کسی کو درست کرنا ہے, تو اس کے لیے سختی نہیں چاہیے, نرمی چاہیے. ہے فلاح اور کامرانی نرمی و آسانی میں, ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں. ڈوب سکتی ہی نہیں موجوں کی طغیانی میں, جس کی کشتی ہو محمد کی نگہبانی میں, صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہ کے نیک بندے نیک لوگوں کی صحبت میں, نیک ولیوں کی صحبت میں بیٹھا کرتے تھے. غریب نواز نے 40 دن داتا کے دربار میں گزارے ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ. آپ سیرت پڑھیں, بزرگان دین خود نیک ہوتے تھے, نیک بزرگوں کی تلاش کرتے تھے, اور اولیاء کرام کی بارگاہ میں جا جا کر بیٹھا کرتے تھے, کیونکہ ان کی صحبت میں, سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت میں صحابہ بنے. اللہ نے علم عطا کیا, اللہ نے براہ راست اپنے محبوب کو عطا فرمایا, اللہ نے عطا فرمایا نا. جبریل امین آیتیں لے کر, وحی لے کر آتے تھے, ٹھیک ہے, اور محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر صحابہ کرام کی تربیت ہوئی. سرکار صلی اللہ تعالی وسلم ان کی تربیت فرمائی, صرف قرآن نہیں, تزکیہ نفس فرمایا ہے, آیتیں تلاوت بھی کی ہیں اور تزکیہ ہے نفس, ان کی نفس کو پاکیزہ کیا ہے, ان کے باطن کو, ان کے ظاہر کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پاکیزہ کیا ہے. وہ سرکار کی صحبت میں بیٹھتے تھے. اسی طرح یہ سلسلہ چلتا چلا آ رہا ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں. حدیث پاک میں آپ کو سنا تھا, حدیث پاک ہے, مومن مومن کے لیے آئینہ ہے, مومن مومن کے لیے آئینہ. مفتی احمد یارخان نعیمی رحمتہ اللہ تعالی اس حدیث کو نقل کر کے اس کی کئی شروعات لکھتے ہیں, اس کی وضاحت لکھتے ہیں, تو بہت ساری ایکسپلینیشن ہے. اس میں ایک یہ ہے کہ انسان اپنے سے نیک اور پرہیزگار اور متقی شخص کے پاس جا کر بیٹھے, کہ مومن مومن کے لیے آئینہ ہے, وہ اسے دیکھے گا تو اس کو پتا چلے گا کہ میں کہاں کھڑا ہوں. ان کی نمازیں, ان کی عبادتیں, یہ سب دیکھے گا تو اس کے اندر, جیسے ہم, میں اپنا کہتا ہوں, جیسے میں اپنے پیر صاحب کے پاس جا کر بیٹھتا ہوں تو مجھے پتا چلتا ہے کہ یہ کہاں ہے اور میں کہاں ہوں, یہ ڈفرینس پتا چلتے ہیں نا. اب جیسے عام آدمی میں بیٹھتے ہیں, آپ صوفے پہ بیٹھائیں گے, کرسی پہ بٹھائیں گے, ملیں گے, ہاتھ چومیں گے, تو انسان کے اندر بہت ساری چیزیں ہو رہی ہے. میں کچھ جھوٹ تو نہیں, انسان ہے, شیطان ہے, نفس ہے, کچھ بھی آ سکتا ہے, اللہ تعالیٰ بچا کر رکھے. اچھا, اب انفارچونیٹ اس طرح کی صحبتیں کم ہیں, میں نہیں کہتا بالکل نہیں ہے, بزرگوں کی ایسا نہیں کہ بزرگ ہیں ہی نہیں ہماری زمین پر, زمین بزرگوں سے خالی نہیں ہے, مگر ڈیفینیٹلی کم ہے. تو اب جب کم ہے تو ہم ایسے بزرگوں کی کتابیں پڑھیں, ان کے حالات پڑھیں, ان کے واقعات پڑھیں, وہاں ہمیں ان کی زندگیوں کا انداز ملے گا اور ہمارا مائنڈ بنے گا. اللہ والوں کی باتیں, یہ مقتت المدینہ نے 5 ولیوم جاری کیے ہیں. کتنے؟ 5 ولیوم اس کے جاری ہو چکے ہیں. ہماری چاہت یہ ہے کہ یہ چیزیں عام ہوں, کمانا ہمارا مقصد ہے ہی نہیں, تو یہ اللہ والوں کی باتیں صحابہ کرام علیہ رضوان سے شروع ہوتی ہیں اور بزرگان دین کی سیرتیں بیان ہوئی ہیں. میں آپ کو سب کو مشورہ دیتا ہوں کہ یہ لیں اور یہ گھر میں رکھ لیں. اسی طرح صراط و جنان تفسیر قرآن ہے, 10 ولیم ہیں, گھر میں رکھ لیں, اردو میں ہیں, یہ رکھ لیں. اس طرح ہماری بہت ساری انگلش ٹرانسلیشن ہوئی ہوئی ہیں بکلیٹ, اب وہ گھر میں رکھ لیں, یہ کتابیں پڑھیں. اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. May you keep